हिंदी जो है कृष्ण की पत्नी है, श्री कृष्ण भगवान, लेकिन हम देखते हैं कि बलराम जी यमुना जी को अपनी तरफ खींच रहे हैं अपना लीला करने के लिए राम घाट। तो इस तत्व को कैसे समझें कि बलराम जी श्री कृष्ण की पत्नी के साथ लीला करना चाहते हैं?
ऐसा है कि पहले हमको समझना यह है कि पृथ्वी पर जब ही कालिंदी मतलब यमुना जी आई तो वो कालिंद पर्वत से आई। उनका पृथ्वी पे जो आगमन हुआ वो कालिंद पर्वत पर हुआ, वहां से वो आई, इसलिए उनका नाम कालिंदी पड़ा हुआ है। और कालिंदी जो आई है नदी के रूप में, वो नदी के रूप में वो ब्रज का अविभाज्य अंग है। जैसे गिरिराज गोवर्धन ब्रज का अविभाज्य अंग है, ब्रज भूमि भी वही ब्रज भूमि, ब्रज का ही अस्तित्व है वो। तो वहां पर वो एक स्त्री के रूप में सेवा नहीं कर रही है, वहां पर एक नदी के रूप में सेवा कर रही है। और बलराम जी उसके कृष्ण की पत्नी के साथ में वो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, वो ब्रज का जो एक वातावरण है उसमें नदी सम्मिलित है, वो एक नदी के रूप में उनके साथ संबंध कर रहे हैं। वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड कि ही इज ट्राइंग टू मिसबिहेव विद कृष्णाज वाइफ, ये वहां पर स्थिति नहीं है। सब कुछ चेतना पर डिपेंड होता है। तो बलराम जी ने क्या सोचा कि मेरी जो गोपियां हैं जो नाग कन्या बनकर उन्होंने पंचांग पद्धति का पूजन करके गोपियों का रूप धारण किया था, उनको उनके साथ राज करने की इच्छा थी। तो तभी वो वारुणी प्रकट हुई थी वहां पर, वारुणी प्रकट होकर वो वाणी पीकर वो थोड़ा सा इंटॉक्सिकेट हो गए थे, उनकी आंखें गोल गोल घूम रही थी। और उनकी इच्छा हुई कि हम थक गए हैं, हमें गोपियों के साथ में जमुना जल में स्वच्छ जल में स्फटिक जल में स्नान करना है। उनका विचार पति पत्नी का भाव का नहीं था, उनका विचार जल में स्नान करना था। और ब्रज की जो अविभाज्य अंग हैं यमुना जी, उनको उन्होंने पुकारा। तो वो उन्होंने सोचा कि कौन जाएंगे नशा करने वाले व्यक्ति के सामने, वाइसराय को। तो उन्होंने फिर हल चलाया है, हल चलाकर दो बातें की हैं। एक तो यमुना जी को अपनी ओर खींचा है तो वो ऐसे कर्वेचर में आ गई, मतलब वो स्ट्रेट थी, उसको खींच कर उन्होंने उसको क्या कहते हैं उसको कला दुलायमान बनाया, तो कलायमान बनाया और उनको अनेक धाराओं में विभाजित कर दिया। जो बड़ा पात्र था उसको, बड़ा पात्र का गर्व था यमुना जी को कि मैं इतनी विस्तारित हूं, मैं क्यों जाऊं वहां पर, तो छोटे छोटे धाराओं में विभाजित कर दिया। तो फिर यमुना जी वहां भाग कर आई है और चरणों में गिरी है और कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आपके ऐश्वर्य को समझा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अगर बलराम जी उसके साथ में गलत व्यवहार करते तो उसको क्रोध आता, वो अपमानित हो जाती। ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं, उल्टा यमुना जी पश्चाताप करके उनको उनका पूजन कर रही है, उनके लिए प्रार्थना कर रही है, वो उनकी सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करती है। फिर उसके जल में भगवान ने जब बलराम जी ने स्नान भी किया है। तो वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड कि यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। और कोई प्रश्न है?
और एक प्रश्न इसमें लिखा है कि त्रिनावर्त को कंस ने 1,00,000 योजन से फेंका तो भी नहीं मरा, विष्णु ने इसको सिर्फ 1,000 योजन से फेंका तो मर गया, कैसे?
क्योंकि त्रिनावर्त के पूर्व इतिहास में लिखा था कि उसको कृष्ण के हाथ से मृत्यु थी। त्रिनावर्त का भी इतिहास है ना, जो उसने अपराध किया था उसको बताया गया तुम बवंडर बन जाओगे, तो बवंडर बनने के बाद में उसका घमंड उतर गया। तो फिर वो साधु ने कहा कि ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, जब वैवस्वत मनु के 28 द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तो उसके हाथ से आपका वध होगा। तो अगर कंस उसको 1,00,000 योजन से ही फेंकता ना तभी उसकी मृत्यु नहीं होती, कारण उसका विधान लिखा गया था कि उसको कृष्ण के हाथ से मरना। जैसे देखो बकासुर का भी आप उदाहरण सुनो, बकासुर के साथ में जितने भी देवता थे सबने युद्ध किया, शिव जी ने त्रिशूल चलाया कुछ नहीं हुआ, ब्रह्म ने ब्रह्मदंड चलाया कुछ नहीं हुआ, यमदंड टूट गया, यमराज ने फेंका तो कुछ नहीं हुआ, फिर अग्नि ने अग्निअस्त्र चलाया, वायु ने वायुअस्त्र चलाया, वरुण ने वरुण पाश फेंका और भद्रकाली ने तलवार चलाई, चंद्र ने निहारिका अस्त्र भेजा, फ्रीजिंग अस्त्र भेजा, सभी देवता ने अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र भेजे लेकिन बकासुर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। उल्टा उसके बाद इतना गुस्सा आया उसको, उसने सभी देवताओं को एक साथ खदेड़ दिया और आकाश में ये सीन था कि एक व्यक्ति सब देवताओं को चारों समय भगा रहा है। तभी बहुलाश्व को, बहुलाश्व ने प्रश्न पूछा है नारद मुनि को, अरे कैसे हुआ ऐसे, इतने बड़े बड़े देवता साक्षात ब्रह्मा अभी कभी उतरे नहीं, कभी तुम सुना है आपने ब्रह्मा जी युद्ध में उतरे कभी, तुम सुना है क्या? कभी भी नहीं सुना है। ब्रह्मा जी ब्रह्मदंड लाए थे, ब्रह्मदंड का कोई मुकाबला नहीं है, यमदंड भी उसके नीचे है, ब्रह्मदंड उसके ऊपर है, क्योंकि तो ब्रह्मा जी उसके निर्माण करता है यम के और यमदंड के, यमदंड तो विश्वकर्मा ने बनाया था, वो बात अलग है। लेकिन बहुलाश्व ने नारद मुनि को प्रश्न पूछा है कि ऐसे कैसे हुआ, तो नारद मुनि कहते हैं कि इसको कृष्ण के हाथ से मरने का वरदान था। जब जाजली मुनि के आश्रम में वो गया था और वहां गुस्ताखी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बड़े मछली खाते हो, जाओ बक बन जाओ। तो जब बक बन गया तो घमंड उतर गया, तो शरण गया जाजली मुनि को। तो जाजली मुनि ने कहा ओके जाओ, बक तो बन गए हो, वो तो उल्टा नहीं हो सकता है। लेकिन द्वापर में 28वें वैवस्वत मनु के काल में जब कृष्ण आएंगे तो तेरी चोंच फाड़ कर तेरा वध कर देंगे, ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये था कि सब लोग उसके साथ युद्ध कर रहे थे लेकिन उसके अंदर कृष्ण थे उस समय, इसलिए उसका वध नहीं हो पाया। अगर कृष्ण को आप अपना लेते हो तो कोई आपका बाल नहीं बिगाड़ सकता है, दो कारण है उसके बकासुर का वध क्यों नहीं हुआ। फिर जब कृष्ण बाहर निकले गए, जब उन्होंने अपने आप पोष्ण बनाया, बड़ा बनाया, तो निगल दिया उसको, फिर कृष्ण ने चोंच फाड़ कर उसका वध कर दिया है। उसी प्रकार से पुनावर्त का वध कंस नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों लिखी थी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है बताइए। ये सब प्रभु जी साधुओं की कृपा है। देखिए कृष्ण के विषय में बोलने के लिए कोई योग्य नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, nobody is ever qualified। लेकिन साधु जब कृपा करते हैं तो गुंगा भी बोल लेता है, नूकम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणम। गुरु कृपा से बहुत अद्भुत कार्य जीव कर सकता है, लेकिन कभी भी उस कार्य को, अद्भुत कार्य को करते हुए जीव को गर्व नहीं करना चाहिए कि मैंने किया, जानना चाहिए कि ये कोई करवा रहा है मुझसे, somebody is doing it to me, I am simply an instrument। और मेरा ये अनुभव है कि अगर हम कुछ कार्य करते हैं भयंकर अद्भुत कार्य करते हैं, तो अगर हम नम्रता बनाए रखेंगे ना कि मैं नहीं कर रहा कोई करवा रहा है, तो उसमें ज्यादा आनंद आता है। और आपने कभी गलती से गर्व कर लिया उसमें कम आनंद आता है, और गर्व करके जो आपकी वाहवा होती है उसमें आपको कुछ समय का आनंद मिलता है। नम्र बनकर आप समझेंगे कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, औजार हूँ भगवान के हाथ का, तो उसका आनंद चिरंतन होता है। सो व्हाट डू यू वांट टेंपरेरी हैप्पीनेस और यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस? तो औजार बनने में, नम्र बनने में जो आनंद है वो चिरंतन काल का शाश्वत आनंद है, और वो आनंद है ना हर बार बढ़ते रहता है, वो आनंद कायम रहता नहीं, वो बढ़ते रहता है, दिन दिन बढ़ते जाए। तो इसलिए ये साधु जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। साधु के हाथ में भगवान ने सारे साक्षात्कारों के तिजोरी की चाबी देकर रखी है, बोलो जिसको बांटना है बांट दे, और वो जिस पर जिसका उनका मन रिझ जाता है उसको चाबी दे देते हैं, वो पूरा भंडार खोल देते हैं उसके लिए। तो हमारी क्या योग्यता है ये गर्ग संहिता, ये कृष्ण लीला समझने की किसको योग्यता है? जन्म कर्म चमे दिव्यम, किसके अंदर उतनी बुद्धि है दिव्य? लेकिन फिर भी ये गुंगा भी बोल सकता है गुरु कृपा से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यस 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 कंटिन्यू, आई एम अवेलेबल, आज संडे है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक प्रश्न है कि आप बोले कि जेल में भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो बहुत ही ऑस्पिशियस हो गया, तो हम लोग भी तो लॉकडाउन में जेल में ही रह रहे हैं, लेकिन हम जब श्री कृष्ण का नाम करते हैं, कथा करते हैं, तो इतना ऑस्पिशियसनेस फील नहीं होता है और उल्टा बोर हो जाते हैं?
अरे सोते ही हम लोग नाम जब करते समय ना, प्रॉब्लम उधर ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर ही है, जब कर रहे हैं माला फेर रही है, कौन माला कर रहा है किसको मालूम। अगर हम देवकी जैसे ही कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे, हृदय में देव कृष्ण को पूर्णता से स्वीकार करेंगे, और जब के समय मोबाइल ना देखेंगे, व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, और कृष्ण को जप नहीं करेंगे, कृष्ण को पुकारेंगे, तो आपके जेल में भी मंगल हो जाएगा। देखो बॉल इज इन योर कोर्ट, भगवान ने नाम आपको दे दिया है, प्रक्रिया दे दी है, सबको समझा दिया है, करना आपको है, और हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? बोले ऐसा रे, वो छोला मला करके 20 साल हो गए, अभी तक कुछ आंसू नहीं आते हमारे। अभी तक आंसू ही नहीं आ रहे हैं, क्या गड़बड़ किधर है? गड़बड़ वो स्टोरी है ना, स्टोरी पता है आपको, रात को बारात निकली थी बोट से, नौजवान बोले हम लोग उसको चलाएंगे नाव को। रात भर नाव चलाते रहे, सुबह हो गई और देखा तो नाव वही है, रात भर नाव चलाते रहे लेकिन बोट तो वही है। क्यों? क्योंकि तो वो नांगर है ना, एंकर वो निकाला ही नहीं उन्होंने। इतने आनंद के बेहोश हो गए थे कि वो नांगर निकालने को भूल गए वो। तो हमारी जो आसक्ति है ना इस दुनिया में, वो तो सबसे बड़ा कारण है दुख का। वो कृष्ण अगर आपको चाहिए तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, एकाग्रता को अपनाना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा कृष्ण के ऊपर। हम जिनकी कथा सुन रहे हैं ना, देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद महाराज, उपनंद बाबा, इतने बड़े किरदार है ये, उनका चरित्र सुनो आप, उनका समर्पण देखिए आप। इतने बच्चों का वध हुआ फिर भी उसने अपने सेवा को नहीं छोड़ा। तो ये किरदारों का जो चरित्र है ना, ये किरदार चरित्रों का जो उपदेश है, जो सारांश है, उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा। इस जीवन को भगवान के लिए झोंक देना पड़ेगा, या टू सरेंडर ऑफर, निछावर करना पड़ेगा अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को। तो क्यों नहीं, कृष्ण तो वहीं खड़े हैं। देखो द्रौपदी देवी वहीं थे, कृष्ण ऊपर खड़े थे, वेट कर रहे थे। जब उसके ऊपर टर्न किया उन्होंने, तभी तुरंत अमरा अवतार हो गया ना, वस्त्र अवतार तुरंत हो गया भगवान का। अभी इधर पुकार रही है, उधर पुकार रही है, इधर पुकारो भाई, पुकारो, पुकारते रहो, देखो क्या होता है, तब तक मैं वेट करता हूं। तो भगवान वहीं रहते हैं। जब हम उनके पास अपनी पूर्ण शरणागति के साथ पहुंच जाते हैं ना, तो वो तुरंत आपको प्रतिसाद देते हैं। तो हम भी जेल में हैं, लेकिन दिल से उनको पुकारो, आपको उसकी अनुभूति होगी, निश्चित रूप से होगी। देखिए इस जेल में हम लोग है अभी लॉकडाउन के, सब लोग दुखी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ लोग ब्लिस में भी है, आनंदी भी है, कुछ लोग भय में है, कुछ लोग टेंशन में है। हाँ, स्थिति एक ही है, लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन डिफरेंट है उससे। क्यों? जो कृष्ण भावना भावित है वो आनंद में है, उनको तो लग रहा है लॉटरी खुल गई हमारी। इतना समय किसको मिला था पहले, रामायण पढ़ रहे, गर्ग संहिता पढ़ रहे, भागवत पढ़ रहे, कथा सुन रहे, कथा कर रहे, अच्छे लोगों से जुड़ रहे हैं। हाँ, उस जो दुर्घटना का लाभ उठाने का कोशिश कर रहे हैं कि समय मिल रहा है तो उसका विधायक उपयोग करो। तो ये जेल वेल कुछ नहीं होता है। वो जेल में रहते हुए मन से 2 लाख गाय दान दिया ना उसने, क्या बहाना बताया? क्या नहीं बताया? करने वाले के लिए करने का बहाना होता है, और न करने वाले के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं न करने के लिए। हमको अपने जेल में रहते हुए देखना है कि जैसे भगवान ने जेल में जन्म लिया है, हमारे जेल में भी जन्म लेंगे वो। बस वैसा हृदय चाहिए हमारे पास, वैसा दिल चाहिए भक्ति से भरा हुआ, तो उधर ही प्रकट हो जाएगी वो। कोई चिंता मत करना, हमारे प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा विधान दिया है, ऐसा क्या कहते हैं फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसा दिया वैसे उसको अपनाओ, फिर देखो आप, कोई कष्ट वष्ट नहीं होगा आपको, कोई भय नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, कोई आनंद ही आनंद होगा। खाली करो उसको, फिर होगा आनंद। और बताइए, इस प्रश्न पर मैंने बहुत विचार किया पहले, मेरे भी मन में प्रश्न आया था, क्योंकि पहला बालक होने के साथ ही उसको भेज दिया गया था, तो हर साल में एक बालक, में 7 साल तो हो गए ना, तो वॉच ही प्रेग्नेंट फॉर 7 इयर्स और व्हाट हैपेंड। तो उसका उत्तर यह है कि वो जो बालक था ना, जो 7वें गर्भ के रूप में आया था, वो ही उनके गर्भ में जब ही ट्रांसफर हो गया तो वो माधुर्य भाव में आ गया, क्योंकि रोहिणी जो है वो बलराम की मूल माता है। तो जैसे ये देवकी कृष्ण यशोदा कृष्ण में विलीन हो गए, वैसे वो जो था अनंत शेष, वो बलराम के रूप में उनके गर्भ में जाकर बैठा। तो एक सरप्राइजिंग मेरे लिए भी, अभी मैं और थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि लुक्स लाइक रोहिणी वॉज प्रेग्नेंट ओनली फॉर 5 डेज, लुक्स लाइक, क्योंकि उसे गर्भवती होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके पति तो है नहीं उसके पास। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान का जो आविर्भाव हुआ है वो तो प्राकृतिक मार्ग से हुआ ही नहीं है, ना देवकी का हुआ है, ना वसुदेव का हुआ है, ना नंद महाराज का हुआ है, ना यशोदा का हुआ है। कहाँ पर आप सुनते हैं कि उनका संबंध हुआ था? वो तो दिव्य रूप से यज्ञ के रूप से तेज आया था उनके मन, है ना, वैसे ही तेज जो है देवकी के हृदय में आया था। तो ये शरीर का संबंध का मामला नहीं है। जैसे सुखदेव जी कितने 18 साल रहे ना माँ के गर्भ में, कितने साल रहे, 13 इयर्स और 18 इयर्स, 16 साल रहे, है ना। तो अगर एक अनुमात्र जीव सुखदेव जी अपने माता के घर में 16 साल रह सकते हैं, तो बलराम जी 7 साल क्यों नहीं रह सकते हैं? तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो गर्भवती पहले से थी और 7 साल तक उसके गर्भ में बालक रहे, और योग्य समय पर जब ये अनंत शेष आए, उनमें विलीन हो गए, तो उन्होंने डिलीवरी कर दिया। बट वी कैनॉट, वी शुड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है, एक बात ध्यान से सुन लेना आप, गुरुदेव ने कहा है जब भगवत गीता पढ़ते हो ना तो पूरा दिमाग लगा के पढ़ो, लेकिन जब भागवत पढ़ते हो ना दिमाग बाजू में रखो, लिसन टू इट बाय हार्ट, बिकॉज आर वेरी मेनी इलॉजिकल डिफिकल्ट अचिंत्य थिंग्स इन भागवतम। कृष्ण लीला को दिल से सुनना चाहिए, दिमाग से सुनना नहीं चाहिए। ये बहुत विशेष बात गुरु महाराज ने कही है, प्लीज लिसन टू भगवत गीता विद ब्रेन एंड लिसन टू हरि कथा, भागवत कथा बाय हार्ट, बिकॉज हरि कथा इज बियॉन्ड लॉजिक। और ये प्रश्न जो है ये लॉजिक का प्रश्न है, ये तर्क का प्रश्न है, तर्क का भागवत में कोई स्थान नहीं है। भागवत को श्रद्धा से सुनना चाहिए और उसी माध्यम से वो समझ में आएगा। अगर तर्क को भागवत पे लगाएंगे और वैसा विचार करेंगे तो भागवत का मतितार्थ कभी भी समझ में नहीं आएगा। सो मे बी मेरा आंसर सही नहीं है, आई एक्सेप्ट, बट आई नो वन थिंग दैट तर्क के रूप से भागवत की चर्चा नहीं करनी चाहिए, भागवत को पूरी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। तो सबको भागवत समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि सबके हृदय में वो हृदय नहीं होता है, वो श्रद्धा नहीं होती है जो जरूरी है भागवत सुनने के लिए। भागवत इज वेरी एडवांस सिचुएशन, इसलिए पहले भगवत गीता, प्रभुपाद क्यों बोलते हैं पूरी भगवत गीता पहले समझो बुद्धि के साथ में, बुद्धि को शुद्ध करो भगवत गीता। महात्मा गांधी कहते हैं कि रोज बुद्धि को स्नान कराओ भगवत गीता के श्लोक से, क्योंकि वो दिमाग को शुद्ध कर दिए। उस शुद्ध दिमाग से फिर पहले नवम स्कंद पढ़ो, नव स्कंद पढ़ो, तब जाके आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी, मर्यादा तैयार हो जाएगी, आप तैयार हो जाएंगे, तब कृष्ण लीला आप ठीक से समझ पाओगे व्हाट इज कृष्ण लीला। यानी पूरी कृष्ण लीला जो है ना वो पूरे बियॉन्ड तर्क है। एक भी कृष्ण लीला देखो जन्म से लेकर उनके ऐलान से लेकर कौन सी चीज है वो तर्क से आप समझ सकते हैं, बताओ। कृष्ण ने कहा तो यमुना जी गोलोक से नीचे उतरी, पर्वत पृथ्वी पर आ गया, गोलोक धाम भी पृथ्वी पर आया, सब इलॉजिकल है। What is logical in this? Tell me, nothing is logical. रात को कमल खिल रहे हैं, चंद्रमा आधा का पूरा हो रहा है, कभी सुना है क्या आपने ऐसा? Everything in Krishna Lila is illogical. But फिर भी हम इतना प्रेम से सुनते हैं उसको क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर आनंद देने वाली कथा है, आत्मा को वृद्धि करने वाली, आत्मा का उन्नति करने वाली, कल्याण करने वाली कथा है वो जीव को जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्त करने वाली कथा है। उसको उसी भाव से सुनना चाहिए। कुछ कुछ चीजें अभी भी समझ में नहीं आई होगी और आगे भी नहीं समझेंगी, हो सकता है मरने के तक समझ में नहीं आएगी। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि सत्य जो है जो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, जो भगवान की कथा त्रैगुण्य के आगे है, वो वही रहेगी, उसकी स्थिति बदलती नहीं है। हम लोगों को वहां पहुंचना है, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं त्रैगुण्यो विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ हो। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं मुझे समझना है तो इस स्थिति को प्राप्त करना है आपको, तब आप समझ पाओगे मुझे। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफीट द क्वेश्चन, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी मे नॉट अंडरस्टैंड टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, और जब हम मुक्त हो जाएंगे ना, परम भक्त बन जाएंगे भगवान के धाम में जाएंगे, तभी भी हमको समझ में नहीं आएगा। गौलोक धाम में भी समझ में नहीं आएगा, कृष्ण इतने अचिंत्य हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, सब बलराम जी कह रहे हैं भगवान को कि अरे तुम्हें समझना मुश्किल है, वो बोलते हैं मुझे भी, मैं खुद को भी समझ नहीं रहा हूँ, आई ऑल डोंट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो इट डजंट मीन दैट हम लोग गौलोक जाएंगे सब समझ में आएगा हमको, नहीं सर, हम वैसे ही अणु रहेंगे, हम वहां पर विभू नहीं बनते गोलोक जाकर, भगवान विभू रहते हमेशा, यहाँ पर भी वहां पर भी, हम यहाँ पर भी अणु है वहां पर भी अणु है, साक्षात्कार होने पर भी अणु ही है। इसलिए वो साक्षात्कारी जो फुल्ली रियलाइज सोल है गोलोक में, उसको भी परम पुरुषोत्तम की लीला समझ में नहीं आती है। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा
गोपीनाथ ब्राह्मण प्रभु, आपको थैंक यू बोल रहे हैं बहुत अच्छी कथा के लिए।
अच्छा, और कोई प्रश्न पूछना शायद?
अर्जुन प्रश्न,
हाँ बोलिए ना।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
यस यस, अर्जुन पुरोहित। यस
प्रभु जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि मतलब सब लोग मतलब जिस भगवान के मतलब लीला में दे आर डिस्प्लेइंग द क्वालिटीज, लाइक वसुदेव इज डिस्प्लेइंग दिस क्वालिटी ऑफ क्या बोलते हैं मतलब सत्य वचन, और युधिष्ठिर महाराज भी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ही डिस्प्लेइंग द क्वालिटी ऑफ धर्म महाराज, धर्मराज। बट प्रभु जी देख मतलब युधिष्ठिर महाराज मतलब दो तीन बार लाइक ही कांट डिस्प्ले द क्वालिटी ऑफ मतलब जो मतलब वो है, जैसे कि मतलब जब गैम्बलिंग मैच के लिए उनको जब बुलाते हैं तो मतलब ही गोस देयर, तो मतलब वहाँ पे लाइक ही इज नॉट स्थिर बुद्धि मतलब।
प्रश्न क्या है पूछे?
हाँ वही मतलब आई एम कमिंग टू दैट, इट्स अ बिट लॉन्ग। तो मतलब मतलब युधिष्ठिर महाराज थोड़े स्थिर मतलब ही इज कंसिडर्ड स्थिर बुद्धि, मतलब उनके नेम नेम से मतलब ही इज कंसिडर्ड स्थिर बुद्धि। तो प्रभु जी जब मतलब गैम्बलिंग मैच में बुलाया, चलो मतलब वो तो मतलब व्यासदेव जी ने उन्होंने उनको बता दिया था दैट यू विल बी एन इंस्ट्रूमेंट इन किलिंग ऑल दैट ऑल द डीमंस एंड ऑल, बट प्रभु जी जब द्रौपदी वस्त्रहरण होता है लाइक द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन हिज लाइफ, मतलब जब उनको दिखाना चाहिए कि वो धर्मराज है, तब भी वो मतलब ही कैन नॉट डिस्प्ले द क्वालिटी ऑफ धर्मराज, मतलब जो धर्म के विपरीत है वो डिस्प्ले नहीं कर पाते द्रौपदी को बचाते हैं।
तो प्रश्न क्या है पूछा नहीं आपने अभी तक?
हाँ मतलब कि धर्मराज का क्वालिटी वो डिस्प्ले क्यों नहीं कर पाते वो टाइम पे लाइक द मोस्ट।
भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप युधिष्ठिर भी होंगे और गलत काम करोगे तो ये परिणाम होगा। भगवान युधिष्ठिर को इस्तेमाल कर रहे हैं, भीष्मदेव का उपयोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भीष्मदेव भी आप होंगे और ऐसे स्थानों पर चुप रहेंगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान ना ये अपने शुद्ध भक्तों को एक किरदार बना के, एक नायक बना के आपको सिखा रहे हैं। तो धर्मराज भी अगर हम बनेंगे और जुआ खेलेंगे तो सर्वनाश होगा, इसके लिए भगवान ने ये सब लीला किया। इसलिए धर्मराज के द्वारा ये बताया गया है, देखो धर्मराज भी कितने हेल्पलेस हो गए थे एक जुए की वजह से, उनसे जुआ को खिलवाया बताओ, और कोई नहीं मिला उनको जुआ खेलने के लिए। हम लोग इतना गंभीरता से लेते नहीं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो किरदार है युधिष्ठिर महाराज, वो जब इतने सत्यवादी धर्मवादी हैं, वो जब जुआ खेलते हैं तो भी अंतिम परिणाम वही होता है जब एक भिखारी खेलता है। बट भिखारी खेलेगा हार गया तो आप इतना सीरियस नहीं लेंगे उसको, बट युधिष्ठिर महाराज खेलेंगे और उनका सर्वनाश हो गया तो आप गंभीरता से लेंगे, बाप रे महाराज युधिष्ठिर का ये हाल हो गया तो हमको क्या करना चाहिए। भीष्मदेव ने वहां पर चुप रहे, वो कहते योग माया ने उनको ग्रस्त कर लिया था पूरा, क्यों? क्योंकि भगवान ने जानबूझकर योग भीष्मदेव को अपोजिट पार्टी में डाला था कि अगर आप भीष्म भी होंगे, पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ जीव होंगे, लेकिन विपक्ष में जाएंगे, असत्य के पक्ष में जाएंगे, सर्वनाश निश्चित है, ये बताने के लिए महाभारत हमारा भगवान ने किया है। टू टेल महाजनो येन गतस्य पंथा, ये सब बड़े बड़े लोग इस रास्ते से गए हैं, आपको चुनना है कौन से रास्ते से जाना है। सब कुछ बताया गया है, बड़ा आदमी गलत काम करेगा तो ये परिणाम है, बुरा आदमी बुरा काम करेगा उसका भी ये परिणाम है, तो बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है ना, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, अच्छा आदमी करे या बुरा आदमी करे, तो बुरे आदमी का अंजाम बुरा ही होता है, ये समझाने के लिए ये प्रसंग का निर्माण है। द्रौपदी के प्रसंग में आप बोलेंगे अरे भगवान तो इतने दयालु है, इतने करुणामय है, क्यों वेट किया उतना, तुरंत क्यों नहीं आए, इतना सब झमेला करने की जरूरत क्या थी, ये दिखाने के लिए कि मैं तब प्राप्त होता हूं जब आप पूर्ण शरणागत होते हो। अगर आपकी श्रद्धा कहीं और बटी हुई है ट्राई कर लो उसको, वहां पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे इतने दयालु भगवान, इतना वेट कराया उसको बेचारे को, इतना कष्ट दिया उसको, इतना तड़पाया उसको, नहीं ये बात सिद्ध करने के लिए कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम योजना पर्युपासते नित्यास नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं महामयम। मैं रक्षा करूंगा आपकी, लेकिन अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अगर आपकी श्रद्धा कहीं और है ना, जता लो उसको, ट्राई कर लो, समझ लो एक बार, पूर्ण साक्षात्कार आपको होगा ना कि कोई सहारा नहीं है, तब मैं हूं ना वहां पर, वहीं पर हूं मैं जहां मैं था, हम थे वही, हम थे जहां, हाँ वही है भगवान और कहीं नहीं है वो। तो हमको ये तय करना है कि हमारी श्रद्धा हमको कहाँ कहाँ बांटनी है। वी मस्ट डिसाइड ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी, आर वी कृष्णास पीपल और मायास पीपल, ये तय करने का दिन जन्माष्टमी है। केवल पुष्पाभिषेक और तुलसी दल अच्छा है, बहुत वेरी गुड, करना ही चाहिए, लेकिन ये भी तय करना चाहिए कि जिनका अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत अभिषेक, तुलसी अभिषेक, पुष्पाभिषेक कर रहे हैं, जिनको सजा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, क्या उनके लिए हम समर्पित हैं? कि अभी भी हमको पैसे पे विश्वास है, कि अभी भी हमको दुनिया में विश्वास है, माया में विश्वास है कि वो सुख देगी हमको, ये तय करने का दिन है ये। तो कृष्ण भगवान अपनी लीलाओं से बता रहे हैं, मैं वही हूँ, वही रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप चाहते नहीं हो, इसलिए भगवान को लीला करनी पड़ती है। और वो भी अपने शुद्ध भक्तों को चुनते हैं, उनको एक प्यादा बनाते हैं, उनके द्वारा हमको सिखाते हैं, एंड दे आर सो ग्रेट सोल्स। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या धर्मराज इतना बड़ा विद्वान था, वो क्या फायदा हुआ, इतना छोटी चीज में हम भी नहीं करते ऐसा, वो कर लिया उसने, है ना। आपने कभी जुआ नहीं खेला है, कभी पत्नी को जुआ पे दाव पे लगाया क्या आपने? तो मैंने तो नहीं किया है, मतलब मुझसे अधिक घिलौना काम धर्मराज ने किया है ना। मैंने कभी मेरी पत्नी को दाव पे लगाया नहीं है, कभी जुआ भी खेला लाइफ में नहीं खेला, मतलब मैं कितना अच्छा हूँ धर्मराज से ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन भगवान ने उनको इस्तेमाल किया, इतना महान व्यक्ति भी जब जुआ खेलता है तो उसका भी दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और अपनी बीवी को अपने भाइयों को दांव पे लगाता है, वो इतना घिलौना काम कर सकता है, ये कैसे सीखेंगे आप लोग? जब युधिष्ठिर महाराज ने किया तो हम लोग सीखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भी इतना घिलौना काम कर सकते हैं अगर वो जुए में फंस जाते हैं तो। देखो क्या गति होती है इस व्यक्ति की जो जुआ खेलता है। मेरे पिताजी है ना, मैं बता दो एक किस्सा सुना था आपको, हम लोग बचपन में वो मेंडीकोट खेलते थे बचपन में, और हमारे पिताजी को बहुत चिढ़ थी क्योंकि हमारे परिवार में बहुत लोग ना जुए से बर्बाद हो चुके हैं, हमारे परिवार में, पिताजी के परिवार में। तो हमको बचपन से पिताजी को जुए से बहुत, मतलब पत्ते से ही बहुत चिढ़ थी, ताश से। हम लोग तो पैसे लगाते नहीं थे, हम लोग कैसे खेलते थे, लेकिन पिताजी के मना करने पर भी हम लोग खेला करते थे छुप छुप के। एक दिन टेरेस पे हम लोग मेंडीकोट खेल रहे थे और मैं ऐसे मेंडी उठाकर ऐसे सर करने जा रहा था तो ऊपर हाथ मेरा पकड़ा गया। तो बोला क्या हो गया? पिताजी ने हाथ पकड़ा, वैसे ही पकड़ के घर लेके गए, सबको घर से बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद कर दिया और पूरा धुलाई किया मेरा अच्छी तरह से। उसके बाद कभी ताश नहीं खेला मैं लाइफ में। अभी आप बोलेंगे कितने दुष्ट है पिताजी, इतना क्या है, उतना क्या, बच्चे जो खेल रहे हैं क्या, जो थोड़ी खेल रहे हैं। लेकिन पापा जानते हैं अभी तो बिना पैसे के खेल रहे हैं, लेकिन ताश का खेल ऐसा है कि वो आपको जुआ खेलने में मजबूर करेगा, आगे जाकर जीतने के लिए मजबूर करेगा। आप दांव पे भी लगाएंगे बहुत चीजें और फिर पतन जो है ना धीरे 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 करके पूरा ह्रास हो जाएगा आपका। तो उस दिन जो धुलाई किया पिताजी ने वो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। नहीं तो हमको भी वो, अरे गोटी खेलते ना गोटी, तो गोटी में कुछ जीतते थे गोटियां, तो भी हम लोग रात भर परेशान रहते, इतनी गोटियां हम हार गए, इतनी जीत गए, कल वापस जाके जीतेंगे। तो बचपन में था मैं, एक दिन मैंने बहुत गोटी जीता खेल में, रात को मुझे पता नहीं क्या अनुभूति हुई, बालक था मैं, एकदम रात को अनुभूति हुई कि ये दो बोतल गोटियां भर के मैं लाया हूँ, कल पता नहीं कल तो हार जाऊंगा, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट डे ने मैंने जाकर बिना खेले दोनों बोतल गोटियां भरी हुई थी, बहुत सारी गोटियां थी, दोस्तों में बांट दी, बोले मुझे आज से गोटी नहीं खेलना है, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया था, कभी जीतना कभी हारना, कभी दो गोटी कभी 50 गोटी, कितना अनसर्टन लाइफ है, कितना मन को डिस्टर्बेंस है उसका। तो ये हमको सीखना है लाइफ में कि माता पिता जो करते हैं, भगवान जो करते हैं, वो अच्छा करते हैं हमारे लिए, हमको सबक सिखाते हैं अच्छी तरह से जीवन के कल्याण के लिए। और कोई प्रश्न है किसी का?
और भी आप प्रश्न पूछ सकते हो।
प्रश्न है तो पूछिए।
यस
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कथा हमको हाथ पकड़ के लेके गए हमको कृष्ण कथा में आप, और अपने साथ मथुरा वृंदावन घुमाया हमें। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग कृष्ण कंधों से धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा है कि इसमें बहुत बार होता है कि भगवान से आपने बताया जैसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए, सिर्फ फिर भी बहुत बार ऐसी इच्छा हो जाती है कि मतलब ना चाहते हुए भी हम भगवान काम जाते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ इच्छा होती है, प्रकट हो जाती है दिल में से, हमें तो ये चाहिए था, हमें वो चाहिए था। तो जब ये भावना मतलब ये जब इच्छा प्रकट होती है तो थोड़ा शर्म भी लगती है कि भाई हमको सब मालूम है, मांगना नहीं चाहिए भगवान से, भगवान दे देंगे बिना बोले कि, या ऐसा भी हमारा जो है कर उस हिसाब से मिल जाएगा, फिर भी इच्छा आती है तो थोड़ी शर्म भी लगती है, तो ये मतलब भावना बार बार आ जाती है, तो मतलब क्या सही सॉल्यूशन क्या है उसके लिए, इच्छा नहीं आनी चाहिए, आती है तो भी उसके लिए प्रॉब्लम।
एक उसका उत्तर ये है कि जो हमारी स्थिति है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भाई ये ऐसा है, ये ऑनेस्ट विथ योर सिचुएशन ना, उसको भी गड़बड़ मत करना कि भाई दिखावे में एक और मन में एक, बी ऑनेस्ट टू योर सिचुएशन कि भाई ऐसा है, नंबर वन। नंबर टू, प्रभुपाद ने जो फॉर्मूला दिया है ना वो परफेक्ट है, वो आपको निश्चित रूप से एक दिन रिजल्ट देगा। देखो कितने सन्यासी ना ऐसे मरते हुए ना ऐसे खाक करके उठे हैं, हाँ डाइंग हमारे हॉस्पिटल दिखा ऐसे मर रहे हैं, हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पूरा लास्ट मोमेंट केयर दे रहे हैं, खट करके उठ के बोलते हैं प्रभुपाद ने जो कहा है वो सच है, ऐसे बोल के गुजर गए वो। मतलब क्या, दे सॉ कृष्णा एट द मोमेंट ऑफ डेथ, कि कृष्णा आए और उनको ले गए गोलोक धाम, यही उसका प्रमाण है। तो हमारे अंदर अभी वो इच्छाएं हैं, अभी क्या करें, अभी जन्म जन्मांतर की इच्छाएं हमने इतना परवरिश करके रखी उसको, इमेजिन एक जन्म में हमने 20 साल जब किया तो बोलता है सब कुछ मुक्ति करके वैकुंठ मिलना चाहिए, अरे 20,000 जन्म हमने लेकर इतना इच्छाएं कल्टीवेट की है, पंछी के जन्म में, कुत्ते के जन्म में, बिल्ली के जन्म में, देवता के जन्म में, मछली के जन्म में, पेड़ के जन्म में, हजारों जन्म में हजारों प्रकार के भोग की इच्छाएं हमने बना करके रखी हुई है, और अपना जब भी इतना अच्छा नहीं है, जब में भी ध्यान नहीं हमारा, इतना समर्पित भी नहीं हम लोग, हम खाली रिजल्ट चाहते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए, तो होगा ही ना ऐसे, इच्छाएं तो हमारे अंदर भी आ रही है, इसमें क्या है, बड़ी बात थोड़ी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदार अधि तीव्रेण भक्त योग है ना, जो भी कुछ आपकी अवस्था है, आपको सब सारी इच्छाएं हैं आपको, या मुक्ति की इच्छा है या कुछ भी इच्छा नहीं है, अकामो सर्व कामो वा, सब के भी अवस्था में भगवान के विषय के रास्ते में लगे रहो, भगवान के मार्ग में दिए हुए साधना में लगे रहो, डोंट गिव इट अप, चाहे जितने बार पढ़ेंगे उठेंगे गिरेंगे जो भी होगा, जो होता है होने दो एक बार, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको, है ना, मार खाएंगे, युद्ध में परास्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे उठ जाएंगे, जो 50 चीजें हो जाएंगे, लेकिन डोंट गिव अप द प्रोसेस गिवन बाय प्रभुपाद, प्रभुपाद ने दिए हुए प्रक्रिया को छोड़ना मत कभी, पूरी श्रद्धा के साथ उसको अपनाना, पूरी श्रद्धा के साथ उसको चलाना जीवन में, चाहे इच्छाएं हो रही है या नहीं हो रही है, डू एवरी डे चैंटिंग हरे कृष्णा श्रद्धा के साथ करना उसको, फिर एक दिन आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से ये इच्छाएं कम हो रही है, होंगी, और हम एक दिन उसके हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, प्रभुपाद पे विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन छोड़ना नहीं है, बीच में करते रहिए, ये भी कम हो जाएगा, आपको लगेगा भी पहले बहुत मछली पे दिल था हमारा, आज मछली को हमको अच्छा लगता नहीं है, ये प्रगति है कि नहीं है बताओ, वो मछली का बू आते ही हमारा चेतना खुल जाती थी हमारी उस समय, लेकिन आज उसी को देखकर चक्कर आता है हमको, उल्टी आती है हमें, ये प्रगति हुई कि नहीं, भगवान प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से और प्रक्रिया से ये चेंज हुआ कि नहीं, वैसे ही एक दिन काम वासना भी जाएगी, दंभ भी जाएगा, क्रोध भी जाएगा, सब जाएगा, एक दिन लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। और कोई प्रश्न है, कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं, सबका केयर करते हैं, चिंता मत करना। यस प्रभु जी, हाँ थैंक यू माता जी, प्लीज
थैंक यू सो मच फॉर द नाइस स्वीट मेलोडियस का था. प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था. एक्चुअली मेरे डैड मुझसे हमेशा पूछते हैं, मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ. सुभद्रा मैया के पेरेंट्स कौन थे?
कृष्ण ने जब भी कंस का वध किया ना, तो तब तक तो 6 बालक डेड, 7वां बालक बलराम, 8वां बालक मथुरा चला, मतलब गोकुल में चला गया. उसके बाद में कृष्ण ने 11 साल के बाद में आकर उनको कंस का वध किया, उनको रिहा किया. रिहा करके वो घर आए. उसके बाद में वसुदेव देवकी ने ही सुभद्रा को जन्म दिया है. वही योग माया है वो, जिसने बलराम को स्थानांतरित किया, जिसने जन्म के समय वातावरण निर्माण किया, जिसने कृष्ण के साथ जन्म लिया, फिर वो आकाश में चली गई और उसकी सेवा चलती रही कॉन्स्टेंटली योग माया की. वही योग माया उसके बाद में कृष्ण की बहन बनकर भी आई है, सुभद्रा देवी. लेकिन छोटी बहन है बहुत, वो बड़े उनसे उम्र में बहुत छोटी है उनसे. हरे कृष्णा. यस हाँ बोलिए प्रभु जी. अच्छा तो एक छोटी सी कहानी बताने का दिल कर रहा है मुझे. छोटी सी कहानी वो ये है कि वो भगवान के चरण कमल जो है ना, बहुत कोमल है. इतना शरीर उनका कोमल है कि वो यशोदा को, रोहिणी को ना, उनको ऐसे हाथ लगाने को भी कष्ट होता था कि मैं कैसे हाथ लगाऊं, इतने सख्त हमारे हाथ हैं, इतना मुलायम, मक्खन से भी मुलायम शरीर है. चरण कमल भी इतने कोमल है उनके. यशोदा को बहुत दुख होता था कि ये लड़का जो है ना, वो जूता भी नहीं पहनता और जंगल में घूमता है. तो एक तो कथा तो वो गोपाष्टमी की है, चप्पल देने का प्रयोजन किया था, वो तो अलग कथा है. लेकिन बचपन में भी यशोदा माई ने कहा था उनको कि बेटा जूता पहन लो, वो कंकड़ कांटे इतने होते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है, सोचकर भी कष्ट होता है, हम सबको होता है. तो कृष्ण क्या कहते हैं मैया को, मैया मुझे पूर्णमासी ने कहा था कि ये ब्रजभूमि जो है ना, ये वृंदा देवी का दिल है, बोलते हैं वृंदा देवी का हृदय है, तो मैं वृंदा देवी के हृदय पे कैसे चल सकता हूँ जूता पहन के. तो वो पूर्णमासी के पास गई यशोदा, उनकी गुरु है ना वो, तो पूछने गई. गुरु जी ने कहा तो वही पूछना था स्पष्टीकरण. तो पूछा माता जी क्या है बात ये, तो बोलती है तो मैंने तो उसको बताया था लेकिन आप जानते नहीं हो, मैंने तो उसको ऐसा ही बता दिया था कि चाहे वो जूता न पहने, लेकिन कारण उसका ये है कि उनके चरण का स्पर्श ये ही ब्रजभूमि की संजीवनी है. उनके चरण जब स्पर्श करते हैं ना ब्रजभूमि को, तो ब्रजभूमि ब्रजभूमि जो उसका गौरव है वो प्राप्त होता है उसको. ये उनके चरण कमल का रहस्य है. तुम्हें देखना है तो खुद देख लो, उनका उनको आगे भेज दो और पीछे से देखो उनके चरणों का स्पर्श होते क्या होता है. तो अगले दिन फिर वो कृष्ण को भेजती है नंगे पैर और कुछ देर के बाद खुद निकलती है और उनके चरण चिन्ह को देखती है. तो क्या देखती है कि हर चरण चिन्ह के यहाँ पर वो भूमि गोल्डन हो गई है, उसमें प्रफुल्लता आ गई है, उसमें तेज आ गया है, और जहां जहां उनके चरण गिरे हैं वहां वहां ब्रजभूमि जो है ना वो एकदम तेजपुंज हो जाती है. तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, बोले इसके आगे मैं कभी जूता कहने के लिए बोलूंगी नहीं उसको, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि हमारे जीवन का जो स्रोत है ब्रजभूमि, उसका उसका जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, बल है उसका, वो उनके चरण कमल है. फिर जाती है दोबारा पास उनके पास, पूछती है चलो भाई भूमि का मैं समझ गई हूँ, भूमि की बात समझ गई हूँ, लेकिन पत्थर का क्या, ये पत्थर में भी चलता है. हाँ वो नंदगांव में पत्थर है, उधर बरसाना में पत्थर है, उधर कामेवन में पत्थर है, परट चहाड़ चरण पहाड़ी है, तो पत्थर तो कितना सख्त होता है, वहां तो कम से कम पहनना चाहिए. तो बोलते नहीं यशोदा ध्यान से सुनना, जब ये पत्थर पर चलता है ना तो वो पत्थर पिघल जाते हैं. दो कारण है उसके, या तो इसके पैर के स्पर्श से पिघलते हैं, या स्वयं ही इनके पैर को कष्ट ना हो इसलिए मुलायम बन जाते हैं. तो इसका प्रूफ भी देखना पड़ेगा. तो फिर यशोदा माई ने एक बार जानबूझ के, मतलब करना ही था विधि उनको, मुंडन का विधि कृष्ण का, तो कृष्ण का मुंडन का विधि जानबूझ के केदारनाथ पे रखा. इसका मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ उसके पहले प्रकट हो चुके थे, इसका मतलब 7 साल की उम्र के बाद में ये लीला हो रही है. हाँ क्योंकि 7 साल के पहले बद्रीनाथ जाने का प्लान नहीं था. उन्होंने कहा कि 7 साल हो गए तुमको जन्म हो गया, अभी बद्रीनाथ नहीं गए हम लोग. तो फिर वो बोलते हैं आंखें बंद करो, तो उन्होंने वहां पर बद्री केदार प्रकट किया है ना, तो पता नहीं आई मे बी रॉन्ग इन इन कैलकुलेशन एंड क्रोनोलॉजी ठीक है, लेकिन जब वो मुंडन का कार्यक्रम केदारनाथ में फिक्स हुआ तो सभी ब्रजवासी पूरा वाद गाद्य वाद्य गायन करते करते पूरा पहुंच गए उधर। आप जानते ना बालक तो पहले ही पहुंच गए भागते हुए, तो ये यशोदा माई को याद था कि मुझे देखना है। तो जब बालक भाग के ऊपर गया ना, यशोदा माई उसके पीछे पीछे गई, देखा तो क्या सारे चरण चिन्ह बने हुए हैं केदारनाथ पे, कैसे पैर रखते ही मुलायम माखन जैसा, पैर निकाला सॉलिडिफाइड, पैर रखते ही माखन जैसा, फिर निकाल दिया तो सॉलिडिफाइड, और चरण चिन्ह निर्माण हो रहे हैं। तब जाकर यशोदा को यकीन हुआ कि वास्तव में इनके चरण स्पर्श होते ही पत्थर पिघल जाते हैं। ये कथा जो है ना ये इस किताब में दी गई है, कृष्ण कर्णामृता बाय बेलो मंगल ठाकुर, भगवान के चरणों की महिमा वर्णन की है। तो ये कृष्ण भगवान ने सबको आनंद दिया है अपने पैरों से, नेत्रों से, मुरली से, ध्वनि से, क्रिया से, बालों से, हर अंग से, सब ब्रजवासियों को बहुत दिव्य आनंद दिया उन्होंने, ऐसा है। तो ठीक है फिर अभी अपनी इस अनंत कथा को सुन विराम दे देते हैं। यस यस प्लीज।
जैसे अभी आपने बताया भगवान सबको मतलब आनंद देते थे, वैसे आपकी कथा से भी हमें बहुत आनंद मिल रहा है और हम चाहते हैं एमपीएस ग्रुप की तरफ से हमारा एक थोड़ा रिक्वेस्ट आ रहा है सबका कि प्रभु जी के पीछे अगर जन्माष्टमी के दिन कभी भी सुबह में अगर आपको मॉर्निंग में टाइम हो, अगर कितना भी टाइम आपके पास हो तो आप एक छोटा क्लास और दे सकते हैं।
देखो वैसे प्रभु जी आपको ये पता होना चाहिए कि जब लेते हैं ना तभी दे सकते हैं। हाँ तो उस दिन श्यामानंद प्रभु देने वाले हैं 2 घंटा के लिए 8 से 10 तक, तो हम लेने के लिए बैठे हैं उस दिन, और शाम को महाराज देने वाले हैं तो हम लेने के लिए बैठे हैं उस दिन, तो लेना भी चाहिए ना। अभी देखो ये पात इसमें भी पानी पी रहा हूँ मैं, अभी पानी खत्म हो गया तो कैसे पानी आएगा उसके अंदर, भरना पड़ेगा दोबारा तभी आएगा पीने के लिए, तो देने के लिए लेना भी पड़ता है ना। तो जन्माष्टमी का 8 से 10 तो श्यामानंद जी का हो गया, शाम को महाराज जी का हो गया, क्या हाँ बोल बोलो। तो अगर आपको 11 बजे टाइम है तो 11 से 12 कर देंगे, ठीक है। तो बुधवार के दिन 11 से 12 हमारे होस्ट लोग क्या कह रहे हैं, गौरांग प्रिय प्रभु क्या कह रहे हैं?
मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि एक बार आपको 1-2 घंटे में कंफर्म करता हूँ कि हम व्हाट्सएप